जिन्होंने अपने अपार करुणा से मुझे उस गृहस्थ जीवन से बचा लिया जो जल रहित आंधी कुएं के तुल्य है, और मुझे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण रूपी दिव्य आनंद के सागर में स्थान दिया। तो यह अध्याय खत्म होने जा रहा है, दो तीन और श्लोक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ब्रह्मानंद भारती रघु चाइल चरमांबर यही मत निल बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती का मृग चर्म पहनने की आदत को बंद करवाया। इस प्रकार महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर अपने लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार के दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। एक कैल मध्य लीलाल सूत्रगान शेष द्वादश वत्सर सुना विवरण। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश कह दिया। अब कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं को सुने, इसका भी तात्पर्य है। इस प्रकार श्री कविराज गोस्वामी ठीक ठीक से व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने प्रत्येक स्कंद के अंत में ऐसा ही विवरण दिया है। आदि लीला में उन्होंने महाप्रभु के बाल्यकाल की 5 अवस्थाओं की लीलाओं की रूपरेखा दी है और उसका विस्तार श्री वृंदावन दास ठाकुर के लिए छोड़ दिया। अब इस अध्याय में उन लीलाओं का सारांश दिया गया है जो महाप्रभु के जीवन के अंतिम काल में संपन्न हुई। ये मध्य लीला तथा अंतिम लीला में वर्णित है। शेष लीलाएं मध्य लीला के द्वितीय अध्याय से सूत्र रूप में वर्णित है। इस तरह लेखक ने क्रमशः मध्य लीला तथा अंतिम लीला दोनों का वर्णन कर दिया है। श्रीरूप रघुनाथ पदेश रहाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के प्रथम अध्याय का, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञान तिमिरांतश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वर्गदातिकं। वन्देऽहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तारा अज्ञा लय गेला प्रभुर चरणे प्रभु तारे समर्पिला स्वरूप स्थाने। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। तो यदि आपको पिछले सैटरडे का स्मरण होगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम सुन रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन फिर से इस श्लोक में वो कर रहे हैं कृष्णदास कविराज, और इन्हीं लीलाओं को आगे चलकर मध्य लीला में बहुत ही विस्तृत रूप से वो वर्णित करते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो एकमात्र ध्येय था वो था चैतन्य चंद्र की प्राप्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति रघुनाथ दास गोस्वामी का जो आकर्षण है वो इसलिए एक प्रकार से बहुत तीव्र उत्पन्न हुआ उनके हृदय में, क्योंकि उनके ऊपर श्रील हरिदास ठाकुर की अहेतु की कृपा हो गई थी। तो भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसका उदय दो प्रकार से हो सकता है। एक है किसी महान वैष्णव की कृपा हो जाए और दूसरी है साक्षात कृष्ण की कृपा। इसका वर्णन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान के भक्तों की कृपा से ही भगवान के प्रति आसक्ति का उदय होता है, और यदि उन्हीं भगवत भक्तों के प्रति हम अपराध की भावना धारण करते हैं तो उस आसक्ति का विनाश होता है। और वह आसक्ति कैसे खत्म हो जाती है? एक साधक के हृदय से जिस प्रकार से पूर्ण आसक्ति का मतलब है पूर्णिमा का चंद्रमा, और फिर धीरे धीरे पूर्णिमा का चंद्रमा छोटा छोटा घटते हुए जाता है और एक समय आता है अमावस्या आ जाती है। इसलिए कभी कभी भक्त कहते हैं मेरे जीवन में तो आजकल अमावस्या चल रही है, अमावस्या का अमावस्या तो दिखता ही नहीं है चंद्र। तो उसी प्रकार से ये अपराध की भावना से आसक्ति धीरे धीरे खंडित हो जाती है, घटित हो जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बालक ही थे उस समय। हरिदास ठाकुर जहां बोडन ग्राम में वो निवास कर रहे थे वहां से बेनापोल आते हैं और फिर ये गोवर्धन मुजुमदार हिरण्य मुजुमदार के यहाँ हम उनका आना होता है यदुनंदन आचार्य के माध्यम से। और फिर ये जो गोवर्धन मुजुमदार ये बड़े वैष्णव की और ब्राह्मणों की सेवा में बड़ा उनका अनुराग था। वो बहुत धनाढ्य थे, अपने धन का इस्तेमाल उनकी सेवा के लिए करते थे। तो एक बार उनको पता चला ये हरिदास ठाकुर आए हैं तो हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने काफी सारे उनकी सेवाएं की, प्रसाद आदि के लिए उनको बुलाया करते थे। तो ये रघुनाथ दास छोटे से थे तो हरिदास ठाकुर की सेवा किया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और ऐसे करते करते हरिदास ठाकुर से बड़ा उनका लगाव हो गया। हरिदास ठाकुर की अहेतु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी को वास्तव में महाप्रभु के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। अभी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वो सदैव लालायित रहे। पहली बार वो गए महाप्रभु को मिलने जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था कटवा में, वहां से चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए थे उस समय वो मिले थे। फिर दूसरी बार महाप्रभु को मिले कब? जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत वृंदावन के लिए वो जा रहे थे। वृंदावन जाते जाते चैतन्य महाप्रभु यहाँ नवदीप शांतिपुर से गए और आगे चलकर रूप सनातन को मिले, हमने पिछले कई दिनों में सुना था। तो उस समय मिले थे तो उस समय महाप्रभु ने कहा मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, लोगों को दिखाने के लिए केवल अपना वैराग्य मंकी की तरह बंदर की तरह मत दिखाओ, यथा योग्य विषय मुंजा आना सकता है, जितने आवश्यक है विषय उनको स्वीकार करो लेकिन उनके प्रति थोड़े भी आसक्ति मत रखो, अनासक्ति के भाव से अपना जो गृहस्थ जीवन है उसका यापन करो। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही वो घर में रहे एक सांसारिक एक आसक्त गृहस्थ के समान। तो उस आसक्त के गृहस्थ के समान रहे तो सबको लगा कि ये तो अभी ठीक हो गया है क्योंकि हमेशा भाग कर जाना चाह रहे थे। तो लेकिन बीच बीच में भागना शुरू करते थे तो उनकी माँ उनके पिता को कहते कि इसको लोहे के चैन से बांध के रखो घर में ताकि ये भागेगा नहीं। इतने सिक्योरिटी 17 से आधे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। अभी हमारे टेम्पल में हमारे पास 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है, वहां एक व्यक्ति को देखभाल करने के लिए 17 सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। और ये इनके दिमाग में केवल एक ही था चैतन्य चंद्र के चरण, सीसी चैतन्य चंद्र के क्या चरण। तो और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही कलयुग के जीवन के लिए वास्तव में वरणीय है या स्वीकार करने योग्य है। तो ऐसे उनके मां ने जब कहा तो उनके पिता कहते अरे तुम समझते नहीं हो, कहते हैं इस संसार में दो चीजें सबको बांध के रखती हैं, और वो क्या है? एक है धन और दूसरा है स्त्री। तो वो कहने लगे हैं, वो कहते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम। वो कहते हैं उनकी मदर को कहते देखो ये जो रघुनाथ है इसके पास धन कितना है इंद्र के समान, और सुंदर उसकी पत्नी स्त्री कैसी है अप्सरा के समान। कहते हैं चैतन्य चंद्र बातुल के राखिते पारे। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है उस व्यक्ति को इस संसारी कोई भी वस्तु या व्यक्ति बांध के नहीं रख सकता। तो कहते ये लोहे की चैन की क्या कहती हो तुम, ये दूसरी बड़े बड़े श्रृंखला बांध के नहीं रखते, रख पाए रघुनाथ को तो ये लोहे की श्रृंखला उनको बांध के नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से एक दिन जैसे हमने पिछली बार भी सुना तो रघुनाथ दास गोस्वामी हम बल्कि महाप्रभु को वो कहते थे मुझे ना छोड़ना है अपना गृहस्थ जीवन, जैसे कई बार डिवोटीज भी कहते हैं ना बहुत हो गया प्रभु जी गृहस्थ आश्रम। तो मैं कल रात को गृहस्थ शब्द के बारे में सोच रहा था तो इंग्लिश में सोच रहा था हाउस होल्डर, जैसे बल्ब का होल्डर होता है बल्ब को होल्ड करके रखता है, तो वैसे ही जितना अधिक आसक्ति का मतलब है हाउस को होल्ड करके रखना, कहते मेरे होल्ड है हाँ इस टेम्पल में क्या है मेरे कमांड है होल्ड कर रहा। तो जब तक ये होल्ड करने की भावना रहेगी तब तक हमारा कोई मंगल नहीं होगा। हम मंगल ग्रह में जा सकते हैं लेकिन अमंगल ही अमंगल है। तो इसलिए वो कहते थे कि मुझे जाना है जाना है जाना है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं। फिर महाप्रभु कहते हैं एक समय आएगा कृष्ण तुम्हें युक्ति देंगे बुद्धि देंगे जिसके द्वारा तुम क्या कर सकोगे इस स्थान से निकल सकोगे। जैसे हमारे भक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी बहुत बुद्धि चलाते हैं है कि नहीं, अलग अलग भगवान बुद्धि देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी सुबह उनके जब यदुनंदन आचार्य उनके गुरु जी ने कहा कि जाओ पुजारी को बुलाकर लाओ, ये गए पुजारी को बुलाने। पुजारी को बुलाने का बहाना करके दौड़ पड़े जगन्नाथपुरी की ओर, और कहां जाकर पहुंच गए 12 दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठे थे स्वरूप दामोदर के साथ। जैसे आए महाप्रभु आनंदित हो गए, उनका आलिंगन किया और किसकी किसके संरक्षण में दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उनकी जिम्मेदारी दी कि आप इसकी देखभाल करो आध्यात्मिक रूप से। तो स्वरूप दामोदर वास्तव में उनके शिक्षा गुरु के रूप में उन्होंने कार्य किया रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो हमारे जीवन में भी हमें संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे एक लता और एक स्त्री हमेशा दोनों को सपोर्ट की आवश्यकता है, बिना सपोर्ट के ये दोनों बढ़ नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति है उसमें हमें संरक्षण चाहिए सपोर्ट चाहिए, और वो किसका है एक आइडियल डिवोटी का। तो हमारे जीवन में भी एक भक्त होना चाहिए जिनसे हम क्या करें संरक्षण महसूस करें, और उनके संरक्षण में हम अपनी जो भगवत भक्ति है वो उचित रूप से संपन्न करें। तो महाप्रभु ने उनको ये बुद्धि दी और जिस बुद्धि के द्वारा वो भाग के कहां पहुंच गए जगन्नाथपुरी की ओर। तो उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं सिंसियरली तो कृष्ण हमारे हृदय में बुद्धि प्रदान करते हैं। और जैसे अभी मैराथन का महीना चल रहा है तो अलग अलग अटकलबाजियां भक्तों को क्या होती है सोचती हैं कैसे ग्रंथों का वितरण किया जाए। और रिसेंटली डिवोटी मुझे बता रहा था वो मुंबई सेंट्रल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो उस समय वो छोटी छोटी बुक्स बांट रहा था, 10-10 की किताबें उसने अपने एक छोटा सा टेबल लगा के ऐसे रखे थे। और वो जब उन ग्रंथों का वितरण कर रहा था 10-10 की बुक्स, तो वो कह रहा था कि ये मूल्यवान ग्रंथ है जो जीवन को बदल देने वाले हैं और आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाले हैं। एक व्यक्ति वहां से घूमते घूमते पहुंचा वहां बुक स्टॉल के पास। उसने कहा अरे ये 10 रुपए की ग्रंथ कहते हुए से, ग्रंथ का मतलब है मोटा होना चाहिए जो उठाया नहीं जा सके, अगर उठाया नहीं जाएगा तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो ग्रंथ का मतलब क्या है, जो कुछ बड़ा हो साइज में। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सके, ये नहीं जाएगा वैकुंठ गोलोक वृंदावन, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 10 रुपए का ये ग्रंथ आप कहां से ये पुस्तिका लेके आए हो और इसको ग्रंथ कहते हो। तो वो जो व्यक्ति है ये डिवोटी बड़ा विनम्र था, उनको बहुत बोलने लगा। तो अभी ये डिवोटी को तुरंत भगवान क्या करते हैं, ददापि बुद्धि योगम। तो भगवान ने बुद्धि प्रदान की, भगवान ने उनको बुद्धि देते हुए इसके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने कहा आप यात्री लगते हो, उन्होंने कहा हाँ मैं यात्री हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो, कहते दिल्ली जा रहा हूं, टिकट है आपके पास? तो कहते मैं आपको क्यों टिकट दिखाऊं, टिकट तो मैं उसको दिखाऊंगा, क्या है चिट्ठी को दिखाऊंगा। तो कहते नहीं नहीं मुझे भी दिखाएं, अभी बहुत फोर्स कर रहा था भक्त, टिकट दिखाया। मतलब तो टिकट देखा तो वो देखा कि अरे इतना छोटा सा पेपर आपको 1000 किलोमीटर ले जाएगा। अभी जैसे है उस भक्त से ये सुना तो व्यक्ति समझ गया कि अभी थप्पड़ मार रहा है मुझे। सबसे अच्छा क्या है, जेब में हाथ डालो 10 रुपए निकालो। तो उसने 10 रुपए दे और वो बुक खरीदी। इस प्रकार से भगवान बुद्धि देते हैं। कल मुझे पदम परिप्रभु कह रहे थे उनके साथ भी ऐसी घटना हो गई, वैसे वो बोलने में बहुत चतुर है। कल परसों वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे तो देखा कि एक व्यक्ति 4 कुत्ते लेके जा रहा है। तो जब कुत्तों को ले जा रहा था और वो भी 4, तो हमारी दृष्टि बहुत तेज हो जाती है। तो 4 क्या, एक कुत्ता भी देखे हम तो भी हम उसकी ओर ध्यान से देखते हैं। मैं अभी लास्ट वीक हावड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली आ रहा था तो मैंने इतना बड़ा कुत्ता देखा नहीं था, मतलब मेरे यहां लग रहा था वो कुत्ता इतना हाइट, और 4 लोग उसको पकड़ कर खड़े थे और उसको राजधानी में बिठा रहे थे दिल्ली लाने के लिए। तो जब ये 4 कुत्तों को देखा इन्होंने तो देखा कि एक कुत्ता के 2 पाँव खराब हो गए थे, शायद खत्म हो गए थे। तो नौकर उनको घुमा रहा था तो उसके 2 जो पाँव थे उसमें व्हील्स लगाए थे, तो आगे के 2 पाँव से कुत्ता चल रहा था और पीछे के 2 व्हील्स के साथ चल रहे थे। तो जब ये देखा तो इन्होंने पूछा अच्छा 4 कुत्ते किसके हैं, तो उन्होंने बोला वो व्यक्ति का नाम लिया। फिर वो धनाढ्य व्यक्ति, इन्होंने कुछ कहा कि हमें उसका नाम दीजिए, तो नाम नहीं बता सकता, घर का नंबर क्या है, जो भी बोला 507 या जो 707। तो जैसे बोला तो ये दोनों भक्त पहुंच गए उनके घर के बाहर, नॉक किया कैसे तो घुसे अंदर, तो उन्होंने बड़ा वेलकमिंग व्यक्ति था। इनको बाद में पता चला 4 ही नहीं उसके पास 45 कुत्ते हैं। तो जब इन कुत्तों के साथ अपने घर में निवास कर रहा था, इनके साथ बैठा तो इनको भगवान ने अचानक बुद्धि दे दी। क्या बुद्धि, इनको गीता का श्लोक याद आया, कभी श्लोक याद आएंगे नहीं लेकिन सटीक जो श्लोक याद आ गया जिसमें कृष्ण कुत्ते का वर्णन करते हैं। तो वो इन्होंने कहा आप वास्तव में पंडित हो। उसको लगा अच्छा ये महात्मा बोल रहे हैं तो कुछ सही है मेरे अंदर, कोई आयरा मायरा व्यक्ति बोले तो फिर थोड़ा संशय है, लेकिन कोई साधु बुद्धिमान कोई बोले तो लगता है कि हाँ कुछ तो मुझ में है। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवा शोपा केच पंडिता समदर्शिना। तो उसमें कहा गीता में कहा गया है कि जो आप तो वास्तव में पंडित हो क्योंकि आप सब में इवन कुत्तों में भी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। जब एक गुणगान सुना उसने तुरंत सेवा के लिए तैयार हो गया, 5100 रुपीज भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रदान किए। तो कहने का तात्पर्य है जब हम सर्व करना चाहते हैं तो कृष्णा हमें उचित बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार की बुद्धि रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए अपने ग्रह का त्याग करके भाग रहे थे। और वास्तव में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा ही इस कलयुग को भगाया जा सकता है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने गीत लिखा जिसमें वो कहते हैं, कले कुकुर कली कदन जदे चावो है, कलयुग पावन कलि भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ है। वो कहते हैं कि यदि कलयुग रूपी कुत्ते को भगाना चाहते हो, अभी वो वहां क्वेश्चन है उनको, भक्तिनाथ ठाकुर को संशय आ गया, कुछ लोग कुत्ते को भगाना चाहते होंगे लेकिन कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, अपने साथ ही कलयुगी कुत्ते को रखना चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन मार्क करते भक्तिनाथ ठाकुर, यदि चाहो है, यदि आप चाहते हो, कुछ लोग नहीं चाहते, तो क्या करो, चैतन्य महाप्रभु जो सचिनंदन है उनके नामों का गुणगान करो। तो प्रभुपाद कहते कुछ कलयुग के अधिकतर लोग कुत्ते को भगाना नहीं चाहते, क्या करना चाहते हैं, अपने साथ ही निवास उसका बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो गॉड है उसकी पूजा छोड़कर कलयुग के लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, डॉग की पूजा कर रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, अभी रिसेंटली विदेशों में तो लोग कुत्तों की पूजा करते हैं, हाँ, जैसे अभी मनुष्य समाज में भी ये देखा गया है केवल कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स होता है। लेकिन अभी अमेरिका में जो लोग घर में कुत्तों को पाल के रखे हैं, ऐसे सारे पालतू कुत्तों का एक मेला होता है, और उस मेले में क्या होता है, उसमें सबसे सुंदर कुत्ता किसका है, उसको बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आजकल वो मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स होता है, वो रैंप पे वॉक करते हुए आते हैं ना अलग अलग वस्त्र पहन के, तो उनको मार्क देने वाले भी लोग बैठे होते, देखते रहते कैसे उनका स्टाइल है, पोज है, बॉडी फीचर्स है, क्लोथ्स है, ब्यूटी है। तो वैसे ही इन कुत्तों को लेके आया लाया जाता है। और कुछ लोग होते हैं, कुत्ता भौंकता कैसा है, ये चलता कैसा है, तो इस प्रकार से उसके गुणों को देखते रहते हैं, उसके सुंदर ध्वनि इसकी है या नहीं है। और फिर फाइनली क्या करते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध कुत्ता है उसको, जैसे मिस यूनिवर्स को एक क्राउन पहनाया जाता है, तो फाइनली कुत्ते को क्या पहनाया जाता है, क्राउन पहनाते हैं। बेचारे कुत्ते को पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी कलयुग की स्थिति है, कुत्ते को पता नहीं है और वो परेशान रहते कि मनुष्य को हुआ क्या है। मैं सोच रहा था जो मनुष्य है वो प्राणियों को देखने के लिए जाएंगे जंगल में, जू में, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि सारे प्राणी मिलके नहीं आए कॉलोनी में कि चलो मनुष्यों को देखते ये लोग कैसे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम विदेशों में, तो विदेशों के जो कुत्ते हैं वो बहुत भाग्यवान है। आज इसी पर ही क्लास होगी। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कुत्तों को लेकर उनकी निंदा बहुत की है, लेकिन एक स्थान में उनका गुणगान किया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस गीत में कहते हैं, कली भी किसके समान है, कुत्ते के समान है, कोई गुण नहीं है उसमें। लेकिन फाइनली एक सॉन्ग वो लिखते हैं जिसमें कुत्ते के एक गुण का वर्णन करते हैं और उसको वैष्णव से तुलना करते हैं। तो यहां हम कह रहे थे कि विदेशों के जो कुत्ते हैं वो बहुत भाग्यवान हैं। मैं कभी कभी सोच रहा था क्या उनका अज्ञात सुकृति था, क्या पूर्व जन्म में उन्होंने पुण्य किए होंगे कि जिसके फलस्वरूप उनको इतनी अच्छी सुविधा, राज्य से थाट पाट मिल रहा है। कई घरों में तो कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल है, उनके लिए बेस्ट बेड है, सब कुछ है। और बल्कि उनके जो स्वामी है, नाम के लिए स्वामी कहा जाता है, उनको टहलने ले जाते हैं, उनकी सेवा इस प्रकार से करते विनम्रता के भाव से, पता नहीं चलता कि कौन स्वामी है और कौन मालिक है। तो बल्कि प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि विदेश में जब कुत्ते को ले जाया जाता है तो जो मालिक है वो हमेशा अपने साथ एक पॉलिथिन रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने मल त्याग किया तुरंत उसको आपको भरना पड़ेगा और तुरंत इधर उधर फेंक नहीं सकते। जहां निश्चित स्थान है फेंकने का वहां जाकर आपको फेंकने, तब तक हाथ में कैरी करता रहेगा वो जो मल है। तो हमारे भक्त कह रहे थे, उनको एक ऐसा प्रश्न आया कि हमने सोचा कि वो प्रश्न अमेरिकन सरकार को भी नहीं आया होगा। वो कहने लगे कि इस प्रकार से यदि कुत्तों के लिए मल उठाने के लिए वो ले जाते पॉलिथीन, और यदि क्या कहेंगे, यदि उस कुत्ते को लूज लूज मोशन हो जाए तो भक्त पूछ कह रहे थे वो कैसे उठाते होंगे। तो दूसरा भक्त कहता है कि वास्तव में हाँ ये किसने नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद भी एक बार जब मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, तो प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते तो हर भक्त जपा में नींद आ सकती है, लेकिन जब वॉकिंग के लिए जाते हैं सारी नींद उड़ जाती है। तो प्रभुपाद वॉकिंग के लिए जा रहे हैं ये सुनते ही सारा मंदिर खाली हो जाता था कि प्रभुपाद के साथ जाएंगे, प्रभुपाद के साथ जाएंगे। और प्रभुपाद कोई सुंदर इमारत को देखते हैं तो कुछ ना कुछ बोल देते, मतलब प्रभुपाद ने किसी और देखा तो भक्त लोग कहते कि आपे कुछ होने वाला है, आपे कुछ बोलने वाले हैं प्रभुपाद, उनका रियलाइजेशन अभी सुनने को मिलेगा। तो ऐसे जाते जाते प्रभुपाद ने तो घास देख लिया, एक पीला घास और एक हरा घास। प्रभुपाद ने कहा ये पीला घास हरा घास है, इसमें क्या अंतर है? अभी आप क्या कहेंगे? एक भक्त कहता है पीला घास में चैतन्य महाप्रभु, हरा घास में भगवान राम। प्रभुपाद कहते नहीं। दूसरा कहता है पीला घास में तृणादपि सुनिचेन, बहुत विनम्र, हरा घास में विनम्र नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ये भी नहीं है। तो भक्त लोग सोचते कि प्रभुपाद क्या सोचते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा पीला घास मतलब, नहीं प्रभुपाद ने कहा हरा घास मतलब जिसकी जड़े हैं, हाँ वो जो जड़ों से जुड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, जिसका संबंध जड़ से है और जिसके कारण वो हरा भरा है, और जो पीला घास मतलब जिसका संबंध जड़ों से जुड़ा नहीं है जिसके बारे में वो सूख रहा है, उसी प्रकार से भक्त है। प्रभुपाद ने कहा वो भक्त भक्ति में हरा भरा है जिसका संबंध क्या है, जिसकी जड़े गहरी गई है, भगवत भक्ति में दृढ़ हो गया है, वो वास्तव में अपने भगवत भक्ति में भी हरा भरा है। मतलब जिसका संबंध भगवान से जुड़ गया है वो भगवत भक्ति में भी हरा भरा है, लेकिन जिसका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा वो पीला घास है, उसको पीलिया हो गया है, हाँ भक्ति में होकर भी वो मरा मरा सा रहता है। तो सब भक्त बड़े उत्सुक हुआ करते थे ऐसी चर्चाएं सुनने के लिए। और ऐसे एक बार प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक से बाहर आ रहे थे, जा रहे थे गाड़ी में, तो पीछे सीट पर बैठे, जैसे बैठे तो अचानक व्यक्ति चलते हुए साइकिल चलाते हुए आ गया। अभी उसको लगा प्रश्न पूछता है स्वामी जी को, आया और कहते स्वामी जी आप ये डंडा हाथ में लेकर क्यों चलते हैं? प्रभुपाद ने कहा कुत्तों को भगाने के लिए। अभी उसको लगा स्वामी जी को प्रश्न पूछूंगा तो बड़ा शास्त्रीय रहस्य मिलेगा सुनने को, कुछ शास्त्रों से डीप नॉलेज मिलेगा। प्रभुपाद ने क्या कहा, ये तो कुत्तों को भगाने के लिए है। जैसे वो थोड़ा आगे चला गया उनके शिष्य साथ थे, तो प्रभुपाद कहते तुम्हारे जैसे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ये है फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सनैलिटी। तो प्रभुपाद इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक जाते थे तो भक्तों को बड़ा अच्छा लगता था और उनके साथ साथ ये भक्त लोग घुमा करते थे। तो एक दिन ऐसे जब निकल रहे थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने एक इमारत देख ली। तो प्रभुपाद ने कहा क्या हम कृष्ण के लिए इतनी बड़ी इमारत एक दिन खरीदेंगे? भक्तों ने कहा जय प्रभुपाद। क्या बोला? तो प्रभुपाद को अच्छा लगता था जय प्रभुपाद सुनना। तो फिर जब आगे 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 चले तो प्रभुपाद ने लिमोजिन कार देखी। अभी वहां की लिमोजिन कार इंडिया में बस है, बड़ी लंबी होती है। एक वक्त मुझे बता रहा था कि ड्राइवर आगे था और ओनर पीछे बैठा था, उनके बीच में 20 फुट का दूरी था। ये लिमोजिन कार है। तो प्रभुपाद ने कहा एक समय आएगा हम इतनी बड़ी कार कृष्ण के लिए खरीदेंगे। प्रभु ने क्या बोला, जय प्रभु कार। जैसे वो आगे आगे बढ़े तो वहां से एक बड़ा सा कुत्ता आ रहा था। अभी सारे कुत्ते की उदाहरण है, तो एक बड़ा सा कुत्ता, वो वर्णन आता है कि गधे के साइज का था, इतना बड़ा, और वो हाँफते हुए आ रहा था। उसके पीछे उसका मालिक भी आ रहा था, तो पता नहीं कौन किसको घुमा रहा था। तो प्रभुपाद ने इन दोनों को देखा। प्रभुपाद ने कहा अरे हम कृष्ण के लिए कुत्ता रखेंगे ऐसा बड़ा। तो भक्तों ने क्या कहा, भक्तों ने क्या कहा। तो प्रभुपाद ने कहा मूर्ख, हम कुत्ते का क्या करेंगे। इस प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कुत्ते की तुलना, कलियुग की तुलना कुत्ते से करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे नहीं, प्रभुपाद चेक कर रहे थे अपने भक्तों की जो मूर्खता है। प्रभुपाद ने कहा कुत्ते का क्या करेंगे कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो कली है वो कुत्ते के समान है। कुत्ते की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम घृणा करते हैं। एक तो चीज है कि बिना मतलब के भोगता रहता है, और ज्यादातर उसका कार्य यही रहता है, जब दिन भर लोग काम में जाएंगे तो ये सोता रहेगा, और जब लोग सो जाएंगे तो इस प्रकार से आजकल किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले दर्शन किसका होता है, एक साइन बोर्ड का, और फिर बड़े बड़े कुत्तों का होता है। तो इस प्रकार से वास्तव में बाकी जानवरों से वो आदम है, लेकिन भक्तिनोद ठाकुर गीत में कहते हैं कि एक अमेजिंग क्वालिटी है, वह वफादार। क्या है, वफादार है। तो हमें भी कृष्ण का कुत्ता बनने का प्रयास करना चाहिए, वैष्णवों का कुत्ता, और वो भी कैसे, वफादार। एक अभी बचपन में एक स्टोरी थी जिसमें वर्णन था कि एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा फैमिली था। अभी वो बूढ़ा हो गया था। जब बूढ़ा हो गया और काफी धन जायदाद उसके पास थी, जॉइंट फैमिली था, और कम समय बचा था मरने के लिए, तो जो भी प्रॉपर्टी वो थी उसके पास, वो किसी को दे दे वो उसकी थी। तो हर कोई घर के लोग बिल्कुल उसके लिए सतर्क थे। तो एक दिन ये व्यक्ति सुबह सुबह कहाँ चला गया मार्केट में, और जाते जाते दुकान के बाहर उसको कुछ सनग्लासेस गॉगल्स नजर आए, चश्मा, धूप के चश्मे। तो ये गया, उसने सोचा अपने पोते के लिए चश्मा ले जाता हूँ। तो दुकान के अंदर गया, चश्मा लिया और चश्मा पहन लिया तो उसको कुछ कानों में आवाजें आ रही थी। उसने सोचा अरे ये क्या, आज सुबह सुबह कोई गाड़ियों की भी आवाज नहीं है। उसने चश्मा निकाला तो सब कुछ ठीक, चश्मा पहना तो फिर से आवाज आ गई। उसको लगा कि जादुई चश्मा लग रहा है। जब वो चश्मा पहना तो उसने ओनर की ओर देखा, और चश्मे की खासियत क्या थी, जो व्यक्ति चश्मा पहनेगा सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। अच्छा है भैया वक्ता के पास ऐसा चश्मा ना हो, नहीं तो श्रोता सोच ही रहेंगे मन में कहां से भी बोर करने आ गए, कब बंद हो जाएगा। नहीं, कई बार हम सोचते रहते हैं, जब क्लास शुरू होने से पहले हम कई चीजें सोचने लगते हैं, तो वैसे ही वो व्यक्ति दुकानदार है वो सोचते हैं, अच्छा ये बूढ़ा कहां से आ गया सुबह सुबह, इसको ना 100 रुपए का चश्मा 200 में बताता हूं। तो जब इसने कहा कि ये चश्मा, उसने पूछा प्राइस क्या है, उसने कहा 200 रुपीज। अरे 100 रुपए का है और 200 बोल रहा है, क्योंकि जान रहा था मन की बात। तो इसने कहा अरे ये तो बूढ़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, ये तो बड़ा कन्विक्शन के साथ बोल रहा है। तो जब इसने लिया चश्मा, गया घर, घर गया तो सोचा मैं उतारूंगा नहीं चश्मे को, नहीं उतारूंगा, पहन के रहूंगा। घर में घुसता है कि नहीं, तो बड़ा जो बेटा है वो उसको दिखाई देता है या मिलता है, और जैसे ही वो घुसता है अंदर तो बड़ा बेटा कहता है कि कहां से आ गए, आज बूढ़ा है और सठिया गया है, हाँ इसका बूढ़े की जवानी वापस आ गई लग रहा है। मन में बड़ा बेटा किसमें कह रहा है, मन में, और कौन सुन रहा है, पिता सुन रहा है। अभी उसने सोचा अच्छा मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें भी सोचते, तो फिर डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट का समय हो गया, तो जो बड़ी बहू है वो भोजन सर्व कर रहे थे, वो कहते बूढ़े पर जवानी चढ़ गई है, बड़ा चश्मा लगा के बैठा है। तो ऐसा हर कोई मन में बोल रहा है, कोई कह रहा थे मरता क्यों नहीं है जल्दी, हाँ क्यों इतना टाइम लगा रहा है, हाँ। तो ऐसे सब लोग सोच रहे थे, तो ये बहुत दुखी हो रहा था। तो फिर फाइनली सोचा कि कोई मेरा शुभ चिंतक नहीं है, सब चाहते कि मैं चला जाओ मर जाओ, सबकी जो चिंता केवल सबको धन की है जो मेरे पास है। तो उस समय सोचा सब लोग मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसी समय वो निकल रहा था बाहर, तो एक कुत्ता आ गया, उनका उसका कुत्ता था घर का एक, वो आ गया, और कुत्तों की आदत होती है तलवे चाटना, तो आया तो उसको प्रणाम कर रहा था, तलवे चाट रहा था, तो उसके बैठ गया। उसने सोचा कि मैंने तो अभी मनुष्यों के मन की क्या बात है वो तो समझ ली, अभी कुत्ते के मन में भी क्या है थोड़ा सा समझ लेता हूँ। तो जब चश्मा पहना तो कुत्ते की ओर देख रहा था, तो कुत्ते के मन में चल रहा था, अरे स्वामी महाराज आप इतने सुंदर लग रहे हो, अति सुंदर, अति अति सुंदर। इसने सोचा मुझे किसने ने बोला, कुत्ता क्या कह रहा है मुझे, हाँ मैं उसका स्वामी हूं मालिक हूं, और वो मेरा गुणगान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आप रियली बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो फिर उसने सोचा कि पूरा फैमिली मुझे मन से नहीं चाहता, ये कुत्ता क्या है वफादार है, इसलिए सारी चीजें किसको दे दी, कुत्ते को ना सारा जो जायदाद है कुत्ते के नाम पर कर दिया। तो उसी प्रकार से आप वैष्णव के वफादार बनते हैं, कृष्ण के वफादार बनते हैं, तो उनकी जो जायदाद है, वैष्णव के पास क्या जायदाद है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति, वो हमें डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वफादार होना चाहिए। हाँ तो पालतू कुत्ता का काम है अजनबी पर भौंकना, तो हमने कई कुत्ते देखे हैं, कोई आए जाए किसी के ऊपर भौंकते नहीं है, इसलिए कई कुत्ते रजोगुण में होते हैं, सतोगुण में होते हैं, और कुछ होते हैं तमोगुण में। तो इस प्रकार से हमें भी कुत्ता बनना चाहिए, लेकिन कृष्ण का प्रामाणिक कुत्ता, जो अपनों से लाड़ करे और अजनबी पर भौंके, जैसे ही माया का अटैक हो भक्त को भौंकना चाहिए, लेकिन हमारा उल्टा है, माया का अटैक होता है, प्रलोभन आता है, तो हम धूम करके उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और भक्तों का कॉल आ जाए, प्रभु जी का फोन आ जाए, तो फिर सिग्नल वीक हो जाता है ना, सारे सिग्नल वीक, सुनाई नहीं देते, साइलेंट में हो जाते हैं फोन, और बहुत कुछ होता है हमारे साथ। हाँ तो इस प्रकार से हमें सावधान होना चाहिए। तो एक डिवोटी बता रहा था कि एक भक्त ने कुत्ता रखा था अपने घर में, तो उसने नहीं रखा था, कौन बहुत जोर लगा रहा था, घर के जो मालकिन है पत्नी ने कहा कि कुत्ता रखना है अभी, क्योंकि बहुत इसकी आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। तो वो कुत्ते को रखा पत्नी ने और वो प्रशिक्षण देते रह गए। टॉमी शेक हैंड, टॉमी न्यूज़पेपर लेके आ जाओ, टॉमी ये लाओ। वो टॉमी कुछ कर ही नहीं रहा था। अभी घर का मालिक ऑफिस जा रहा था, थका भरा आता था, पत्नी किसके साथ एक ट्रेनिंग एजुकेशन हो रहा है, कुत्ते के साथ। एक दिन वो आ गया बहुत थका हारा, उसने कहा छोड़ दो ना उसे, वो कोई सीखने वाला नहीं है। वो कहते अच्छा, कहते धैर्य रखिए, हाँ आपको भी पहले कुछ नहीं आता था, आप भी अभी क्या हो गए हो, सीख गए हो। तो जो डिवोटी शेयर कर रहा था, हम 5-6 डिवोटी जोर जोर से हंस रहे थे, तो एक सन्यासी भी एक लेक्चर में बता रहे थे कि वो डिवोटी कैसे बने। तो वो सन्यासी, नाम नहीं बताऊंगा उनका, फ्यूचर में कभी बताऊंगा, वो भी कुत्ते के कारण ही भक्त बने। वो सन्यासी कह रहे थे कि अपने पूर्व लाइफ में उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो बहुत फिलोसफी की बुक्स पढ़ना उसको अच्छा लगता था। तो वो इंडियन एक फिलोसफर एक कृष्णमूर्ति उनकी किताबें पढ़ा करते थे। अभी कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ पढ़ के कृष्णा शब्द उसको इतना अच्छा लगा कि उसका एक कुत्ता था, उसका नाम क्या रख दिया, कृष्णा। अभी ये उनका प्रेमी था, तो ये डॉग का नाम कृष्णा रखा था उस गर्ल ने। तो ये जब एक दिन आया उनको मिलने, तो कुत्ता कहाँ गुम हो गया था। जैसे ही आया उसने कहा कि जो कृष्णा है वो खो चुका है, कुत्ता फाइनली बोला कि कुत्ता है वो, आप ढूंढ के ले आओ। अभी ये तो क्या नहीं करेगा उसके लिए, लोग तो तारे तोड़ के देने के लिए तैयार है, कुत्ता क्यों नहीं ढूंढ के लाएंगे। तो ये गए ढूंढते ढूंढते, कृष्णा कहा हो, कृष्णा कहा हो, तो जो लेक्चर में बता रहे थे, या ऐसे गए कृष्णा को ढूंढते ढूंढते, तो देखा अंदर अंदर जा रहे थे गलियों में या फिर सड़कों में, तो फिर दूर से एक हरिना पार्टी आ रहे थे, क्या गाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब संकीर्तन आ रहा था और इस संकीर्तन में भी सब लोग नाम पुकार रहे थे हरे कृष्णा, तो अभी इसको लगा ये लोग भी तो कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं, शायद इनको पूरा नाम पता है। तो जब ये व्यक्ति उनके आसपास गया, तो एक भक्त के पास गया और उसको लगा इनको कैसे पता कि मैं भी कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, ये सारे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो ये एक भक्त के पास गया, वो कहते आप कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कहते मैंने सारा जगत कृष्ण को ढूंढ रहा है, हम सब कृष्ण की खोज में हैं। तो अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है। तो इस प्रकार से जब वार्तालाप हो रहा था और उसने पूछा आप हाथ ऊपर करके बोल रहे हो कृष्ण का ढूंढ रहे हो, कहते हाथ ऊपर करने से ही तो मिलेंगे। तो इसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए और ये कहा कि आप पूरा नाम जानते हो क्या, कहते ये जो कृष्णा है उसके पहले हरा लगाना पड़ता है, हरा लगाने से कृष्ण जल्दी आ जाते हैं। अभी ये बिल्कुल उसमें विश्वास हो रहा था और साथ साथ जा रहा था, ये भी हाथ ऊपर कर रहा था। तो फाइनली ये कीर्तन टीम करते 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 कहां पहुंच गई, टेंपल के अंदर। वो भक्त ने उसका हाथ पकड़ा और डेटिस के सामने ले गया, कहते ये रहे कृष्ण। अभी वो किसी और कृष्ण को ढूंढ रहा था। तो सन्यासी कह रहे थे कि इस प्रकार से मैं वास्तव में इस मोमेंट से जुड़ गया। इस प्रकार से उनका वो अनुभव था। तो प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिलोड ठाकुर कहते हैं कि इस कलयुग रूपी कुत्ते से छुटकारा तभी मिलेगा जब आप सचिदानंद गौर हरि के गुणों को गाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के गुणों को। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष भेंट है कृष्ण भावना जो हमें प्राप्त हो रही है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। और यदि हम प्रयास करते हैं कृष्ण को दूसरों को देने से, तो ये कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग रूपी कुत्ता हमें कभी भी काटेगा नहीं। मुझे याद है मुझे कुत्ते ने काट लिया था। सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग में जा रहा, किसी को बुलाने के लिए फादर ने जब भेजा 5:30-6 बजे खेतों में जाना था, तो मैं ऐसे देखा एक कुत्ता सो रहा है बिना किसी काम के। तो ठीक है वो हम कैंसिल करते तो एक दो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरीज आपको आपसे शेयर करता हूँ। टाइम हो गया है, 9 बजे मुझे खत्म करना था, लेकिन 2-3 मिनट लेता हूँ। तो ये कृपा वितरण का महीना है, यदि हम इसमें कृपा वितरण करते हैं तो हम सौभाग्यशाली कहलाएंगे। इवन नारद मुनि प्रथम स्कंध में कहते हैं कि मेरे जीवन में भी कौन आए थे, भक्ति वेदांत आए थे, है ना। उनका जीवन भी किसने बदला था, भक्ति वेदांत ने। भक्ति वेदांत उनकी सेवा की थी ना उन्होंने, व्यासदेव को कहते। उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी भक्ति वेदांत आए हाँ श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, और उन्होंने हम सबका जीवन वास्तव में बदल दिया। तो प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वो केवल बुक्स नहीं है, साधारण पुस्तकें नहीं है या ग्रंथ भी नहीं है, और कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में पूरे परंपरा की कृपा को रखा है। इसलिए जो भी उसको छूता है वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसलिए डिवोटीज कहते हैं कि इस कारागार से निकालने की ये चाबी है, प्रभुपाद के ग्रंथ क्या है, चाबी है, जिसके द्वारा हम बाहर निकल सकते हैं इस भौतिक जगत से। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग ग्रंथ पढ़ के अंदर आते हैं, लेकिन अंदर वही टिकते हैं जो ग्रंथ को कंटिन्यू पढ़ते हैं। फिर से पढ़ के तो हम सब आ गए, लेकिन रहना है तो क्या करना होगा, पढ़ना भी पड़ेगा ग्रंथों को, नहीं तो कितने सारे आए और कितने सारे चले गए। प्रभुपाद ने कहा, भवानंद स्वामी जो थे वो उन्होंने एक शेयर किया था, वो कहते कि प्रभुपाद ने मुझे कहा कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने मुझे हाँ स्पेशली भेजा कि तुम चले जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जाओ ग्रंथों को लिखो और उनका वितरण करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का ये आदेश था जिनके कारण मैं इस स्थान में आया और ये सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो रशिया में कई सारी घटनाएं मैं पढ़ रहा था रिसेंटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक घटना आती कि वहां तो -50 टेम्परेचर होता है। डिवोटीज कहते हैं कि जब हम दो ही चीजें खुली दिखती है, नाक और आंख, बाकी चीजें ढकी हुई, कहते इतना ठंड है, ठंडी हवा कि आंखों से पानी आने लगता है और पानी नीचे नहीं गिरता, यहां ही जम जाता है, तो उसको ऐसे फोड़ना होता है फिर निकलना होता है बाहर। तो कह रहे थे कि रशिया में रॉक शोज होते हैं बहुत सारे, हजारों लोग जाते हैं उसको अटेंड करने के लिए, और बाहर जब निकलते हैं तो अंदर तो सारा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये भक्त लोग ऐसे ठंड में बाहर वेट करते हैं उनका पार्किंग लॉट में बुक्स देने के लिए। जैसे वो लोग आते पीते हुए, कहते वो ज्यादा बुक्स ले जाते हैं। कहते एक व्यक्ति आया, वो इतना नशे में था उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, जब कार में बैठ गए तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा ये रहा भगवद गीता आध्यात्मिक बुक है। तो कहते मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते देख, वो भक्त कहते देखने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनिए। तो भक्त सुनाने लगा कि ये भगवद गीता है, कृष्ण ने 5,000 साल पूर्व बोली, बोलते जा रहा था। वो डिवोटी कह रहा था कि सबसे ज्यादा बुक्स उस व्यक्ति ने ली, क्योंकि उसकी आंख क्या थी, बंद थी। वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बुक क्यों ले रहा हो और क्यों तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने सारे प्रभुपाद की बुक्स ली। तो ऐसे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था कार के पास, तो एक डिवोटी उनके पास जाता है, कहता है कि ये रही भगवत गीता देता है, और वो कहता है कि ये आध्यात्मिक बुक है। आध्यात्मिक बुक, पहले तो लगा बुक हाँ ठीक है लेने के लिए तैयार है, आध्यात्मिक जैसे बोला क्रोध आ गया उसको, भगवत गीता को लिया और ऐसे जोर से फेंक दिया पीछे। उस पार्किंग के दूसरे कार के पास एक व्यक्ति कार खोल ही रहा था, जाके वो भगवत गीता उसके कंधे में गिरी। वो कहते ये क्या हो गया, जब उसने देखा थोड़ा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अरे ये तो सुप्रीम की कृपा आकाश से डायरेक्ट कृपा। तो उसने कहा ये कृपा भगवान की सीधा, ये फिर ले गया और आज वो दीक्षा लेके पुस्तकों का वितरण कर रहा है। तो हम आपको नहीं कह रहे कि इस प्रकार से पुस्तक वितरण कीजिए, इजी वे है, क्या करो फेंकते रहो। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं भक्तों के जीवन में इस पुस्तक वितरण की। हाँ, तो दोनों चीजें हैं, ग्रंथों का वितरण करें और साथ साथ उसका अध्ययन करने के लिए भी श्रील प्रभुपाद से याचना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे
करना।